ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की, जिससे करोड़ों रुपए की बचत हुई है। बाद में सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता बंसीलाल गुज्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और समृद्धि के मार्ग पर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने बढ़ती कीमतों और रुपए के घटते मूल्य पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संविधान ने ही भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एकजुट किया है। राज्यसभा की कार्यवाही भी 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली में आज 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों से पूरी रात जमीनी स्तर पर तैनात रहने और राजधानी के सीमा क्षेत्रों सहित सभी स्थानों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। आयोग ने उन्हें आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। आयोग ने पर्यवेक्षकों को प्रलोभन या धमकी के किसी भी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। वे संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की पूजा करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज से विशेष बस सेवा की घोषणा की है। चंडीगढ़ में श्री विज ने कहा कि ये बसें प्रत्येक जिले के मुख्य बस स्टैंड से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच रवाना होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पिछले महीने हुई आखिरी समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों से आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाये के लिए समन्वित तरीके से काम करने के निर्देश दिए थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में ग्रामीण सड़कें काफी विकसित हुई हैं। वहां 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि वर्ष 2021-22 में कुल 3,278 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि सहकारी समितियों के विस्तारित होने से बेरोजगारी की समस्या के समाधान के साथ ही उग्रवादी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए 20 से 30 लाख लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने चेतावनी दी है कि अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बंद किए जाने से जीवन रक्षक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। यूएस एड महानिरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2024 के बीच संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों को 25 अरब डॉलर आवंटित किए गए थे। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन में सतीश कुमार करुणाकरण ने पुरुष और अनमोल खरब ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष एकल मुकाबले में तमिलनाडु के सतीश कुमार ने उत्तराखंड के सूर्याक्ष रावत को कड़ी टक्कर देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महिला एकल के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की अनमोल खबर ने दिल्ली की अनुपमा उपाध्याय को मात दी। कर्नाटक 28 स्वर्ण के साथ पहले और सर्विसेज 21 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।